पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।
पुण्यात्मा, अध्यात्म मार्ग का अपने को कैख भी पता नहीं था आज तक, और हम जिन गुरुओं को गुरु मानते थे वो गुरु नहीं थे, वो टीचर नहीं थे। जो टीचर हमारे अपने अध्यात्म बुक से, होली बुक से, के ज्ञान से परिचित नहीं तो टीचर कैसा। जो अध्यापक अपने पाठ्यक्रम से अपरिचित है, उसके अतिरिक्त ज्ञान सुना रहा है तो आदमी ठीक नहीं, वो टीचर ठीक नहीं। फिर परमात्मा सचखंड लेकर गए उस प्यारी आत्मा को, गरीबदास जी को, वहां अपना सारा सब कुछ दिखाया। और वहां जाकर गरीबदास जी ने देखा कि एक अन्य रूप में वही परमात्मा सिंहासन पर बैठे, जैसा राजा बैठता है, सिर पर मुकुट है, हीरे पन्ने जड़े हुए हैं, सिंहासन बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा एक छतर उनके सिर के ऊपर है सफेद, और एक बहुत बड़ा गुम्बद मंदिर नुमा गुम्बद है, उसके सेंटर में भगवान विराजमान है। नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में जो गए थे भगवान, वो वहां चंवर उठा करके अपने दूसरे रूप पर चंवर करने लगे, जैसे एक सेवक अपने गुरुजी पर करते हैं। तो गरीबदास जी देख रहे हैं कि भगवान तो ये है जो सामने तख्त पर बैठे, और ये बाबा जी यहां का कोई इनका सेवक है। इतने में वो सिंहासन पर बैठे भगवान तेजोमय शरीर, यानी एक रोम में करोड़ सूर्य मिलाद, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी उस मालिक की, वो खड़े हो गए और बाबा जी बैठ गए तख्त पर, उस सिंहासन पर बैठ गए, और उस चंवर को वो तेजोमय शरीर वाले भगवान एज ए सेवक, सेवादार की तरह सवर कर रहे हैं बाबा जी पे, जिंदा महात्मा के ऊपर। अब गरीबदास जी देख रहे हैं, क्योंकि बालक हैरान है कि ये बाबा जी है या भगवान है, भगवान ये है या ये है। इतने में तेजोमय शरीर उस कबीर परमात्मा जो जिंदा महात्मा के रूप में थे मालिक, उसमें समा गए, और इतना नूर हो गया उस दाता का। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा गरीबदास, ये जितने भी पृथ्वी पर प्राणी है, 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने जीव हैं, वो सभी यहां रहा करते थे। देखो सामने नीचे दिखा, उनको अलग स्थान है, वो अलग से 30 सेकंड पोर्शन, सेकंड पार्ट का, तो उसमें दिखा के देखो, वो सब इनके बंगले खाली पड़े हैं, कितने अच्छी इनकी शोभा है। ये भोली आत्मा गलती करके चले गए छोड़ के स्थान। अब उसको देखकर गरीबदास जी ने कहा कि भगवान मुझे यहीं रख लो, मैं नहीं जाता नीचे। परमात्मा बोले बेटा ऐसे नहीं रख सकते, आप जब यहां थे आप भक्ति से परिपूर्ण थे और सब इच्छा से गए हो, अब मैं आपको अपनी इच्छा से लाया हूं, आप नीचे जाओ, मेरे गवाह बनो कि कौन परमात्मा है, आपने आंखों देख लिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश से आपकी मुलाकात करा दी है, जिसको नीचे के व्यक्ति सुप्रीम पावर मानकर धोखा खा रहे। और ये धर्मराज था जो सबका न्याय लेखा जोखा करता, जो आप अभी आपसे मुलाकात कराई थी, और इसको मैंने आदेश दे दिया, दे रखा है, मेरा जो भक्त हो जाएगा ये अकाउंट नहीं करे उनका, वो मेरे को पास आएंगे, अन्यथा देखो वो कैसे उन नरक में डाल रखे हैं, किसी को कहीं सजा दे रहा है, ये यही दिलाता है। और जो मेरी शरण में आ जाता है ना, फिर ये काल के दूत उसको सताते नहीं। और जाओ तो आप मेरे गवाह बनो बेटा, आपके भाई बहन बहुत दुखी हो रहे हैं, और कलियुग के अंदर एक ऐसा समय आएगा, मेरा इस काल के साथ वायदा हुआ है, और इसने स्वयं कहा है कि कलियुग में कितने जीव ले जाना, तो जब कलियुग की बिजली पीढ़ी शुरू होगी तब मैं सबको पार करूंगा, और उसके लिए ये आपके गवाही की आवश्यकता पड़ेगी कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। तो गरीबदास जी को समझा बुझा के वहां से तैयार किया और बताया कि मैं 120 वर्ष काशी में भी रहा था, बनारस में, लेकिन ये भोली आत्मा मुझे पहचान नहीं सकी, और आप जाना मेरी गवाही देना। परमात्मा ने उनके अंदर वो अमृतवाणी फीड कर दी जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने कहा था धर्मदास जी को, कि बर्मा पंथ जो कबीर पंथ से चलेगा वो गरीबदास का होगा, और उस बार में पंथ के प्रवर्तक यानी गरीबदास जी 1774 में उनका जन्म होगा, तो उनके द्वारा मेरी महिमा की अमृतवाणी पुनः प्रकट होगी यथार्थ ज्ञान की, क्योंकि वो बीच के अंदर जो काल के एजेंट संत आएंगे कबीर पंथ में, वो कबीर सागर में कुछ फेर बदल कर देंगे, अपनी सूझबूझ से वो उसको काट छांट कर सकते हैं, इसलिए इस यथार्थ ज्ञान को पुनः जीवित रखने के लिए, पुनः प्रदान करने के लिए गरीबदास जी के माध्यम से ये तत्व ज्ञान फिर से मालिक ने दिया, जो दास अब आपको सुनाने जा रहा है। तो उसके बाद गरीबदास जी को वापस छोड़ दिया, उधर से क्या हुआ कि बच्चे को मृत जानकर, देखा हिलाकर वो गिर गए, मृत जानकर शमशान घाट पर रख दिया था, चिता पर रख दिया था, अग्नि लगाने वाले थे तभी परमात्मा ने उनकी आत्मा को वापस भेज दिया। उसके बाद उस परमपिता से प्राप्त ज्ञान को, आंखों देखे ज्ञान को किस प्रकार बोला, ग्रीव कस्तूरी नाम कबीर है ये बिन छेड़े मकंते, आद अंत की कहते हूं पटतर कोए न संते, नैनो मद निरखत रह अवगत नाम कबीर, बेड़ा पार लगाए दे सुरत सरोवर तीर, दोने नो बिच कमल है उजल हिरंबर धाम, शेष शेष पुन रटत है जिन्होंने पाया वो राम, शेष 88 ना गए ये 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई बोके, शेष 88 पांच में और 2500 को पूछे, ये तो अस्थिर है नहीं कबे मुकाम कबे कूचे, दसमा तो अवतार है, दसमा जो अवतार है हिमालय का नीरे, भौतक गोते खाएंगे नो सतगुरु कहे कबीर, ना सतगुरु जननी जन्या जाके माने बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है जाना तीनो ताप, शब्द संदेशा कहते हूं बिन बिन भेद विचारे, इनको माया जानियो ये नौ दसमा अवतार, कृष्ण कन्हैया राम है बलि बावन अवतार, हिरणा कुश नरसिंह है ये सब माया विस्तार, वो तो अचल अनूप है नूरी देह शरीर, ये करता हो उतरे ये माया के रघुबीर, धरता को करता कहे ये बड़ा अंधेसा मोहे, पारस पद भेटा नहीं तो जिसको कहिए लोए, लोक अलोकम दीप सब ये पूर्ण पद प्रकाश, धोल धरनी सब जावेंगे थिर रैसी आकाश। ग्रीव आकाश नाश में है नहीं और सब का नाश, शब्द अतीत सुभान है तिथि बारह न मास बारह मास। अब क्या बताते हैं परमात्मा से परिचित ज्ञान से ग्रीव दास जी के कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े मैकंत, कस्तूरी के अंदर से अपने आप सुगंध आती रहती है, उसको छेड़ने और करेलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कि कबीर परमात्मा में इतनी शक्ति है, उसके संपर्क में आने के बाद पल पल में आपको महसूस होगा कि मुझे किसी की शरण प्राप्त हुई है। फिर क्या बताते हैं कि जहां पर कबीर परमात्मा रहते हैं, सहज 88 ना गए वो 2400 पर चौक है, 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई भोके। कबीर परमेश्वर ने कहा है कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, बंदे सभी काल की डोरी। फिर सहस 88 पांचे में इन 2500 को पूछ, ये तो अस्थिर है नहीं कभी मुकाम कभी कूच। अब सभी की सतीची बता रहे हैं गरीबदास जी, क्योंकि ये सूक्ष्म वेद है, ये वेद है, केवल ये चौपाई और दोहे नहीं है, इनके अंदर गूढ़ रहस्य है, जिस कारण से इनको आज तक हम समझ नहीं सके। इसमें क्या बताना चाह है कि 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता, और जिनको आप 9 अवतार 10 अवतार कहते हो, किसी को 24 और 25 अवतार कहते हो, ये सभी नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अस्थिर नहीं है, स्थाई नहीं है, ये नित्य नहीं है। और आप यहां इस लोक में आकर गलत साधना करके और क्या स्थिति होगी आपकी। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूला तात जीव कहाया। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, जब तू सतलोक से आया, एक नेक आत्मा था, भक्ति से परिपूर्ण था, एक लाल था, अब तू इस काल का फंस गया। इसने पहले तो आपको रखा ऊपर ऊपर स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्म लोक में, वहां ये क्या करता है, आपकी पूंजी से आपके पुनों को वहां सारे डिपॉजिट करवा लेता है जाते ही, और उनमें से अपना इसने विधान बना रखा है, जैसे जैसे रेस्टोरेंट बना रखे हैं, कोई लोक कोई ब्रह्म लोक में भी कई प्रकार के रेस्टोरेंट हैं, तो जो जिस रेस्टोरेंट में यानी उन स्वर्ग में रहना चाहता है उनके टैक्स लगाता है और सारी सुविधाएं तुम्हें देता है। आपके पुण्य जब वहां से खत्म हो जाते हैं तो आपको पृथ्वी पर पटक देता है कर्म भोगने के लिए। अब आप निर्धन हो गए उस भक्ति धन से, और आपको ऐसा अज्ञान बना दिया, आप में ऐसा ज्ञान भर दिया कि आपको केवल यहां कोठी बंगले और ये प्लाट प्लोट यही दिखाई देते हैं, इससे आगे कुछ सूझता ही नहीं। परमात्मा आते हैं, ज्ञान नेत्र हमें देते हैं, तब हम कुछ सोचने पर विवश होते हैं कि केवल यही काम नहीं था। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को, कि लाल से हीरा भया हीरे से भया मोत, मोती से सीसा भया जब बिसरा जा तुर गोते, सोने से चांदी भया चांदी से भया रूप, रूपे से सीसा भया जाना नहीं स्वरूप, दस्त भया तांबा भया यो मन हो गया रांगे, शब्द मैल जाना नहीं यो नाहक धारा सांगे, पीतल से कांसा भया कांसे से भया लोह, लोहे से माटी भया जब व्याप्या दिल द्रोह, कौड़ी गिट्टी संख ले ये दरियाओं की झाल, इन बातों क्या पाइए कर सतगुरु नजर निहाले। अब क्या बताते हैं कि जब तू वहां से आया लाल था, पहले आपको ब्रह्म लोक में रखा, फिर नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश के कोम स्वर्ग है उनमें, फिर कोमन स्वर्ग में आपकी पूंजी कम करते करते फिर आपको पटक दिया पृथ्वी पे। लाल से हीरा भया, हीरे से भया मोती, मोती से सीसा भया, जो बिसरा जात और गोती। यानी आप अपने जात और गोत को भूल चुके हो। कैसे? जीव हमारी जाति है, ये मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है न्यारा। हमारा जो धर्म है और हमारी जाति कौन सी है, आप यहां डिवाइड हो गए। फिर मूल ज्ञान में परमात्मा बताते हैं कि आप अपने मूल स्थान को भूल गए। आप कहां रहा करते थे, आप वहां कितना सुख था, तो इसको कहते हैं जात और गोत को भूलकर आप अन्य ही क्रियाएं कर रहे हो जो शोभनीय नहीं है। अब क्या बताते हैं, सोने से चांदी भया, चांदी से भया रुपया, रुपये से सीसा भया, जब जाना नहीं स्वरूप, दस्त भया तांबा भया। यानी कति गिरता गिरता गिरावट में पशु पक्षियों तक की योनि तूने प्राप्त कर ली, इसका भावार्थ यह है। और किस लिए? शब्द महल जाना नहीं, ये नाहक धारा सांग स्वांग। हमारा जो ओरिजिनल बॉडी अन्य है, आज हमने मनुष्य का स्वांग कर रखा है, किसी ने स्त्री का, किसी ने पुरुष का, फिर हम गधे का स्वांग करेंगे मनुष्य जीवन समाप्त करके भक्ति ठीक ना होने से, फिर हम गधे का स्वांग करेंगे, फिर कुत्ते का स्वांग भरेंगे, यानी ऊपर का कौर बदल लेना स्वांग कहलाता है। इससे बचने के लिए क्या बताया है, गट में शोक सिलसिला, ये सूत तक बढ़ा अंधेर, ये दम गिरती के दिए, भाई फेर सके तो फेर। अब क्या बताते हैं परमात्मा के घट में शोक सिलसिला और सूतक बढ़ा अंधेर, और ये दम गिनती के दे रखे हैं, इनमें भक्ति कर सकता है तो कर ले। जैसे कई भक्त कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमें बहुत सा काम है, ऑफिस में बहुत काम रहता है, बैंक में लगे सारा दिन टाइम ही नहीं मिलता है, और घर आते हैं तो और कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। कहते बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, अभी तो बहुत से काम करने हैं। परमात्मा कहते हैं इस मनुष्य शरीर के अंदर जीव को चांस मिला है परमात्मा पाने का, और ये अटपट करके आप इसको बर्बाद करना चाहते हो तो आपको ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। क्या बताते हैं कि घट में शोक सिलसिला और सुतक बढ़ा अंधेर, अज्ञानता के कारण आपकी एक समस्या खत्म होती है, दूसरी तैयार हो जाती, कर लेते हो, उसको ऐसे करना था, उसको ऐसे करना था, वो कहां गया, उसको ऐसे हो गया, अब हानि होगी, अब मुझे लाभ हो गया, लाभ हो गया तो कुछ और तैयार करूंगा। परमात्मा कहते हैं ये गिनती के श्वास है आपके, गिन कर डाल रखे, एक श्वास भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, और जिस दिन वो श्वास पूरे हो जाएंगे, आपकी कोठी, आपके बंगले और ये कार, ये परिवार नो का नो रह जाएगा, आप कहीं कुत्ते बनकर और दूम लगाकर घूम रहे होंगे। तो परमात्मा कहते हैं अगर कुछ किया जाता है तो इसी में करना पड़ेगा, जिससे फ्री होकर फिर भक्ति की सोच रहे हो, यह महागलती आपकी, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं आकर के लीला की थी, एक जुलाहे का काम कराया और एक गृहस्थ जीवन जीकर दिखाया, बाकी उनके कोई पत्नी नहीं थी परमात्मा कबीर जी के, और ना उनके कोई माता पिता थे और न ही उनके पुत्र पुत्री थी। पुत्र पुत्री तो उन्होंने दो मुर्दों को जीवित किया था किसी परिस्थितियों में, कि ताकि ये भोले व्यक्ति मुझे पहचान सके कि मैं गॉड हूं, भगवान हूं, और नीरु नीमा जो माता पिता थे उनको कमल के फूल पर परमात्मा सतलोक से आकर प्रकट होकर प्राप्त हुए थे। ये इतना परिवार था उनका। तो हमें ये बताना चाहते हैं कि आपका भूल लाग रही है कि अब तो बहुत काम है फिर देखूंगा, या गलती मत कर। अब क्या बताते हैं, घट में शोक सिलसिला ये सूत तक बड़ा अंधेर, और ये दम गिनती के दिए तू फेर सके तो फेर, कि यो तो भाई शोक सिलसिला ये चलता ही रहेगा, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, और परमात्मा की शरण में आने के बाद फिर वो आपके इन सभी पाप कर्मों के दबाव को कम कर देंगे। उसके लिए उदाहरण दिया है कि एक SHO पुराने समय में एक दरोगा अपनी घोड़ी पर बैठकर किसी दूसरे गांव में जा रहा था किसी कार्यवश। जून का महीना, हरियाणा राजस्थान का यह क्षेत्र, आगे एक किसान रेट से पानी निकाल रहा था, बैलों को चला रखा था, एक कोल्लू की टाइप का होता था, नीचे से बाल्टियां बांध कर पानी बाहर निकाला जाता था, बैलों से उसको चलाया जाता था। तो उस समय ऐसी ही ये टेक्निक होती थी, बाल्टियां बांध रखी थी पीपे की, और लकड़ के वो लठ एक पाट बना रखी थी जिसको बैलों से घुमाया जा रहा था। तो वो सारा ही शोर बहुत करता था, उसमें ची चू 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 बहुत होती थी। अब दरोगा जी को प्यास लगी दोपहर 12 बजे का समय, उधर से घोड़ी भी प्यासी थी, तो उसने देखा कि सामने पानी निकाल रहा है किसान, वहां पानी पीऊंगा और घोड़ी को पिलाऊंगा। अब वो निकट आया घोड़ी सबके ऊपर बैठकर, तो उसमें वो शोर आर हो रहा था रेट चलने से, चू चू ची ची चू चू। तो दरोगा ने कहा उस किसान से कि किसान इस चू चू को बंद कर, मेरी घोड़ी बिदक रही है। वह घोड़ी भाग रही थी वापस, उसने वो रेट बंद खड़े कर दिए, बैल रोक दिए, वह चू चू बंद होगी। वो घोड़ी को लेकर निकट आया तो तब तक पानी फील्ड में खेत में जा चुका था, पानी पी लिया था खेत में, पीने योग्य स्टॉक नहीं था। तो दरोगा जी ने कहा किसान पानी निकाल, उसने बैल चलते कर दिया, वह फिर चू चू हुआ, घोड़ी फिर भाग गया 10 किला दूर। तो उसने कहा ये चू चू बंद कर, किसान ने फिर बैल रोक दिया, फिर निकट आया पानी नहीं मिला। उसने कहा फिर पानी चला, पानी चलाते वो फिर चू चू शुरू हुई, घोड़ी भाग गई। तब किसान ने कहा दरोगा जी इस चू चू में पी लो, पीना है तना दोनों मरोगे, क्योंकि पानी चू चू में मिल जाएगा। तो पुण्यात्माओं इस काल ने आपके यहां चू चू ला रखी है, इस चू चू में पी गए तो पी गए, ना तो फिर दुर्गति भारी हो जाएगी। घट में शोक सिलसिला ये सुतक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए भाई फेर सके तो फेर। ये सांस का सेवन कर सके तो कर ले, ना तो यू एक दिन समाप्त हो जाएंगे आपके। बाका पड़दा महल का कोई न जाने भेवे, बिन सतगुर क्यों पाइये ये अटक रहा सुखदेव। बाके पड़दे हम गए भाई सतगुर के उपदेश, शिव ब्रह्मा विष्णु रटत हैं पार न पावे शेष। मौला कहो मुर्शिद कहो खाले कहो खुदा, अल्लाह कहो अलख कहो आवागमन न जाए। जय गोपाल दंडवत करो चे पैरों पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से ये असला असल सलाम। परमात्मा कहते हैं कि ऊपरले मनते आप अन्य जो भी साधना करते हो या प्रणाम करते हो, उसके लिए बताया है कि हृदय से प्रणाम करो, तब आपको प्रणाम यज्ञ का फल मिलेगा। कुल का खामिंद एक है दूजा नहीं गंवारे, सबका मालिक एक है दो नहीं है, और दो कहे सो दोज की फिर पकड़ा जा दरबार। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कबीर पुरुष सिर मुकुट है कोट भानो उजियारे, वो दाता जग मंगता वो समर्थ सृजनहारे। गरीबदास जी बता रहे हैं कि कबीर पुरुष सिर मुकुट है, परमात्मा सतलोक में बैठे हैं सिंहासन पर, उनके सिर पर मुकुट है और कोटि करोड़ सूर्यों जैसा उनकी प्रकाश है। कबीर पुरुष सिर मुकुट है कोटि भानो उजियारे, वो दाता जग मंगता वो समर्थ सृजनहारे। वो सबका दाता, उसके अतिरिक्त सभी जितने देवी हैं देवता हैं ब्रह्म पर ब्रह्म और ये ब्रह्मा विष्णु महेश राजपाट राजा प्रजा सभी मंगते हैं उस परमात्मा के याचक हैं। और वो समर्थ दाता सबका सृजनहार और सबको सब कुछ देने वाला दाता है। जोग जीत करुणा में ये मुनिंद्र कहो कबीरे, बारह पंथ चलाई या फिर डगे बदावे धीरे। सब रावण राज तपक चौदह सही रपती कोट असंख, जाहिर दय सतनाम नहीं वो राव नहीं वो रंक। अब गरीबदास जी क्या कह रहे हैं कि जिसके पास पूरी पृथ्वी का भी राज्य हो और वो भक्ति नहीं कर रहा है तो वो राजा नहीं है, वो तो एक रंक व्यक्ति है। रंक अध्यात्म मार्ग का, और उससे अधिक बताया है कि राम रटत दारिद्र भलो, दारिद्र माने निर्धन व्यक्ति, और चाहे टूटी हो घर की छान वो सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। पूरी पृथ्वी के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से एक मजदूर करोड़ों गुना अच्छा है उस मालिक की नजरों में जो सत भक्ति कर रहा है। वो कंगाल है, वो साहूकार है, वो भक्ति वाला। सब रावण पति रावे है जक रोम रोम धुन हो, दम खाली नहीं नाम बिना छत्रपति है सोए। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। नानक तो निर्भय किया वहे गुरु सत जाने, अदली पुरुष पिछाणिया वो पूर्ण पद निर्वाण। दत्ता जिया को मेले दक्षिण बीच दयाले, सुक्का खूट हरा हुआ वो ऐसे दीन दयाल। दादू को सतगुरु मिले वो देई पान की पीक, बूढ़ा बाबा जिसे कहें ये दादू की नहीं सीख। दादू के सिर पर सदा वो अदली असल कबीर, टक्कर मारी जद में ले फिर सांभर के तीर। दादू ध्यान उलंघिया तीन दिवस तीन रात, आगे से आगे में ले वो शब्द स्नेही साथ। आसन असल कबीर है ये सबके सतगुरु एक, ब्रह्मंड एक सो समझ ले ये दूमे के सिरेख। देही को सतगुरु कहे ये सब धुंधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं वाकों सतगुरु जान। दादू का पिंजर पड़ा और नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन सा हमको बड़ा संदेह। अब क्या कहते हैं गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से कि देही को सतगुरु कहें ये सब धुंधर ज्ञान, यानी ये बॉडी जो ऊपर है इसके नीचे एक और बॉडी है सूक्ष्म शरीर। वो सूक्ष्म शरीर के अंदर हम जो भी साधना करते हैं उससे वो सूक्ष्म शरीर चार्ज होता है, और जो गुरु पद पर होते हैं सतगुरु होते हैं तो जो अंदर जो शरीर है उसमें उनकी शक्ति होती है, ऊपर के शरीर को तो ऐसा समझो जैसे सर्प कांचुली छोड़ जाता है, ये ऊपर की कांचुली है, अंदर वो सर्प अलग था। तो ये ऊपर जो बॉडी सूक्ष्म आपको दिखाई दी है, जो माता पिता से हमें प्राप्त हुआ है, ये तो एक कांचुली समझ लो सर्प वाली, और इसके अंदर ओरिजिनल शरीर है, वो है सतगुरु, और उस शरीर में वो शक्ति युक्त है। ऊपर से चाहे उसका उस पांच तत्वों का बॉडी कैसा ही लगता हो आपको, चाहे ये पुराना हो, टूटा फूटा हो, काला हो, पीला हो, सफेद हो, लेकिन अंदर जो वस्तु है वो है सतगुरु जो इस बॉडी के अंदर है। देही को सतगुरु के हैं ये सब धुंधर ज्ञान, चार दाग आता नहीं वा को सतगुरु जान। इसके अंदर जो शरीर है वो चार दाग माने जैसे चार प्रकार से अंतिम संस्कार करते हैं, कोई तो जमीन में गाड़ देता है, कोई अंतिम यानी सवा कर देता है, जलाता है, कोई वैसे जल प्रवाह कर देते हैं, कोई वैसे एक मचान बनाकर ऊपर डाल देते हैं, पशु पक्षी खा लेते हैं। कहते वो जो शरीर आपका अंदर जो शरीर सतगुरु है जो अंदर इस बॉडी में, वो है उसका शरीर और वो उस चार दाग में नहीं आता। देही को सतगुरु के हैं ये सब धुंधर ज्ञान, चार दाग आता नहीं वा को सतगुरु जान। फिर कहते हैं खोड़ पड़ी तो क्या हुआ, अगर ये शरीर छोड़ गया सतगुरु, कहते खोड़ पड़ी, और आप भी जो भक्ति करके जाओगे सभी के लिए कह रहे हैं, खोड़ पड़ी तो क्या हुआ ये झूठी सब पटीट, पक्षी उड़ गया आकाश को और चलते कर गया बीट। ये बॉडी जो आज आपको नजर आती है सत्व ज्ञान से आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कौवा पक्षी उड़ते समय बीट करके चला जा, ये इतनी सी बॉडी है बस, और पक्षी अलग है। यानी इसको समझने के लिए उदाहरण दिया है कि जैसे सर्प ने कांचली छोड़ दी है, तो सर्प वो कांचली सर्प नहीं, उसके अंदर थी वास्तविक वस्तु। इसी प्रकार आप यहां से जाओगे, जब आपकी भक्ति आपकी साधना से आपका सूक्ष्म शरीर इतना चार्ज हो जाएगा कि उस समय आपको इससे निकलने में बहुत आसानी रहेगी, और उस भक्ति से आपके दिल में इतनी दृढ़ता आएगी, आपको मृत्यु का शोक नहीं होगा। ये जीव के बस की बात नहीं होती, एक तो बगैर मतलब की टेंशन करके बैठ जाए वो दुखी हो रहा है, और एक ऐसा व्यक्ति होता है कुछ दिक्कत आ जाए तो भी टेंशन नहीं उसको, तो पिछले संस्कारों से उसमें ऐसी उसका धीर है, उसके धीरज है। ऐसी भक्ति से आपके अंदर ये क्वालिटी आती चली जाएगी। कृष्ण कन्हैया राम को ये जीव कहे करतारे, और शरीर पड़ा भगवान का इनको देख विचारे। कि तुम राम कृष्ण को भी परमात्मा मानते हो, जीव संज्ञा के व्यक्ति, ये भी मरे, ये भी छोड़ गए इन शरीर। कहते आकार भार ठारे नहीं, ये पांचों तत्व मिल जावे, और चार जुग जो तन रहे तो भी दे ग्रह सत भाए। कहते यदि इतनी लंबी उम्र भी आप बना लोगे, चार युग तक की भी जीवन प्राप्त कर लोगे, एक दिन फिर भी मृत्यु होगी, तो उसके लिए क्या बताते हैं, यह जीवन सत सुफल है जब तक राम रटंत, देखोरी को जान दे भरम पड़े हैं पंथ। कि ये जीवन चाहे कितना ही आपका जितना भी है, इसमें इसकी सफलता उसी में है जब तक आप भक्ति करते हो, और भक्ति नहीं करते हो तो चारों युग भी जीवित रहना कोई यूज नहीं इस जीवन का। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु साहेब एक है दूजा भ्रम विरोधे। अब गरीबदास जी स्पष्ट कर रहे हैं कि सतगुरु और परमात्मा एक ही होते हैं, और दूसरा उसमें कोई समझता है तो उसकी अपनी बुद्धि के सत्र में कमजोरी है। सतगुरु साहेब एक है ये दूजा भ्रम विरोध, बिन सतगुरु सो जय नहीं चाहे पढ़ो अठारह बोध। बिन सतगुरु के आप चाहे वेद पढ़ो, अठारह बोध पढ़ो, कितना ही ज्ञान ग्रहण करो, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। और फिर क्या करें गरीबदास जी, सतगुरु और साहिब एक ही समझना। यानी ये ज्ञान जो आज आपको मिल रहा है, ये भगवान बिना नहीं बताया जा सकता। और भगवान इस दास पर राजी है। ऐसा अनमोल ज्ञान ऋषि मैं ऋषि ब्रह्मा विष्णु महेश शर्प पटक का मर गए चले गए, इनको वेद समझ नहीं आई, इनको गीता समझ नहीं आई, इनको पुराणों का ज्ञान नहीं। गुरु मानुष कर जानते, ते नरक ये अंध, ओवे दुखी संसार में फिर आग काल के फंद। तो यहां भी गरीबदास जी कह रहे हैं, सतगुरु साहेब एक है ये दूजा भ्रम विरोध, और बिन सतगुरु सूझे नहीं चाहे पढ़ो अठारह बोध। गल घोटा गुरुआ घने ये फांसी दे अड़ाए, और द्वादश तिलक बना के फिर जमपुर दे धकाए। अब क्या बता रहे हैं गरीबदास जी के, ये झूठे गुरु, ये गल घोटा गुरु घने कह देते हैं गुरु बदलना नहीं चाहिए, और गुरु का पद प्राप्त करके ये कोरा नकली ज्ञान देते हैं, उनके विषय में कहते हैं गल घोटा गुरु घने, और ये फांसी दे अड़ाए, बांध देते हैं इनको कि ये मेरे शिष्य हैं, किसी और की सत्संग में नहीं सुनना है, और उनके पास ज्ञान नहीं है। तो कहते हैं द्वादश तिलक बना के, बारह तिलक माथे का बना लेंगे, बड़ा महापुरुष और विद्वान नजर आवेगा। और कहते हैं फिर काल के लोक में धक्का दे देते तुमको गलत साधना करवा के। अब क्या बताते हैं, झूठे गुरु का नाक ले और फिर श्रवण और नये ने, सतगुरु बोले साख ये दूर कर फोकट फेन। अब यहां गरीबदास जी थोड़ा सा उनको सतर्क कर रहे हैं और धमका रहे हैं कि कितने नालायक आदमी हैं जो झूठे गुरु हैं, इतने अनमोल जीवन को नाश कर रहे हैं। एक श्वास मनुष्य जीवन के एक श्वास की कीमत बताते हैं। कबीर कहता हूं कई जाते हूं और कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है भाई तीन लोक का मोले। एक मनुष्य का सांस कितना कीमत है, और ये एक मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देते हैं जिसमें करोड़ों अरबों सांस जाते हैं उनके। तो कितना नाश कर दिया इन लोगों ने, कितनी हानि कर दी, तो उनको कितना दंडित करना चाहिए वो बता रहे हैं। झूठे कहते झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य स्वामी को फूके, या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हम कूके। अब यहां गरीबदास जी यानी एक ऐसे भाव से कह रहे हैं, ये क्योंकि साधु संत किसी को फूकने के लिए या मारने के लिए नहीं कहते, नौकारे ने फूक दे परे ने, यानी एक तरफ पटक दे हमारा काम नहीं, बस इतनी सी बात है। कहते झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य स्वामी को फूके। गरीबदास जी कहते हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं ये मूड मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के इनको दो गढ़ जोटे। कि ये चतुर प्राणी हैं जो अटपट करके गुरु बन गए, भोली भाली आत्माओं को फंसाए बैठे हैं, और हम इतना क्लियर ज्ञान बता रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, प्रमाण बता रहे हैं, और आंखों देखा भगवान का ज्ञान बता रहे हैं, और फिर भी ना स्वामी मानने को तैयार है ना उनके शिष्य मानने को तैयार है। तो उसके विषय में कहा है कि झूठे गुरु को झटक दे अपड़ारण दे उसने, और शिष्य स्वामी को फूक यानी उनको पड़ारण दे, ना मानते तो समझाने का फर्ज बनता है, उनके साथ खसे नहीं। या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हम कूक, सतगुरु सतगुरु क्या कहे ये शब्द अतीत पहचाने, रोम रोम में तेज है कोट सूर सिभान। गरीबदास जी कहते हैं झूठे गुरु का नीतर लावे और गरते काट घसीटे, पर या के पीटे पाप नहीं है उसने निश्चय पीटे। पीटन का अर्थ है कि उसको स्वीकार नहीं करे, उसकी बातों में नहीं आवे, और उसको फिर घर पे आने से भी विरोध करे कि बस बतेरे दिन आपने हमारा नाश कर लिया, खाना खाओ और जाओ। इतना सा उसके साथ लगाव रखें। अब सूक्ष्म वेद के अंदर आगे क्या बताते हैं परमात्मा, गरीबदास जी बता रहे हैं, सूक्ष्म वेद में जो ज्ञान दिया है कि भाई ये काम करण के हैं और ये करण के नहीं है, कौन क्या क्या कर रहा है। एक बैदे का अंग है गरीबदास जी महाराज का, उसमें क्या बताया है कि जो इस प्रकार के साधक हैं वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। कैसे, सट दर्शन सट वेख कहां में, बहुविध दूंदो दार मचावे, ये तीर्थ व्रत करत तरबीता, वेद पुराण पढ़त है गीता। सट दर्शन, ये छह प्रकार के भेख हैं, जैसे कोई वैष्णो, कोई नाथ, कोई कनपाड़ा नाथ, कोई सन्यासी, गिरीपुरी, कहते इनको अगर आप देखोगे, जनसाधारण इनकी क्रियाओं को देखता है तो बड़ा आकर्षित होता है और ये सोचता है भी महापुरुष पड़ा है। कैसे, जैसे गर्मियों के दिनों में पांच धुने लगाकर बीच में बैठ जाता राख लपेट के, आम आदमी तो इन्हों समझा भी महात्मा के कमाल है तो। और फिर सर्दियों के दिनों में, जैसे सर्दियों के मौसम में एक टपाई के ऊपर एक मटका रखेंगे, उसमें सैकड़ों सुराख बना लेंगे, उसमें पानी डालने जाएंगे और नीचे बैठ जाएगा। पो के महीने में, जनवरी के महीने में आम आदमी तो वैसे ठुठ रहे, स्वेटर दर्सी पहने हुए भी सर्दी लग रही है और वो बैठा उस ठंड में नीचे, तो आम आदमी ने सोचा भी महात्माएं पड़ा है। परमात्मा कहते हैं, कहते डंब करें डूंगर चढ़े ये अंतर छिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करें ये बोवे सूल बबूले, ये तो डड़े ढोरे। अब क्या बताते, सट दर्शन सट भेष कहां में, और बहुविध दूंदो धार मचावे, तीर्थ व्रत करें तरबीता, ये वेद पुराण पढ़त है गीता। वेद पढ़े, पुराण पढ़े और गीता, और कह कहेगा पता नहीं इनको। अब संस्कृत में घोट लिया, आरती की तरह बोल दिया, श्रोता अशिक्षित इन्हों सोचे महापुरुष है भाई, कमाल कर दिया, इसने तो संस्कृत बहुत आवे है, ओ हो बस क्या बात के नाम ले लो इस्तंत है। कक्का पता नहीं था इन, इस प्रकार के ड्रामाबाजी में हम मूर्ख बने रहे क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान नहीं था। अब दास का उद्देश्य है कि आपको पारखू बनाऊं, ऐसा विद्वान बना दूं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए यहां पर, वो आपसे मुंह की खा के जाएंगे इस ज्ञान के आधार से। चार संप्रदा बावन द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बिचारे, अरमाला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उवा बाई बकदा। ओए होए, चार संप्रदा बावन द्वारे, अर जिन्हों नहीं निज नाम बिचारे, कोई कुछ नाम देता है, कोई कुछ नाम देता है, कोई कुछ साधना का मंत्र बताता है, कहते हैं गीता पढ़ते हो, वेद पढ़ते हो, वेद और गीता में है कहीं ये मंत्र जो तुम दीक्षा देते हो। वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में केवल एक ओम मंत्र है, ओम कर्तु समर किल्बे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ, विशेष कसक के साथ यानी सच्ची श्रद्धा से जाप करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के ये भक्ति करो, तो ये तो ब्रह्म का जाप है। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता, वो कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, संभवात माने जन्म लेने वाला, और कोई उसको असंभवात कहता है कि वो जन्म नहीं लेता। संभवात कहने वाले आकार में आए अवतार मानते हैं और असंभवात उसको निराकार मानते हैं। तो परमात्मा कैसा है इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे पूछो, विस्तार के साथ बताएंगे। तो इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान और गीता ज्ञान ये दोनों इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं कह सकते इन ज्ञानों को। फिर यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में कहा कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूं, वेद ज्ञान दाता कहता है, और मैं ब्रह्म रूपी ब्रह्म लोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूं और मेरा एक ओम मंत्र है। तो ये बाकी मंत्र कहां से घसीट लाए? इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय विराट के श्लोक नंबर 13 में पूरी गीता में साधना का एक मंत्र है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का गीता ज्ञान दाता कहता है, मुझ ब्रह्म का, क्योंकि श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म काल बोल रहा है। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में गीता में कहता है कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं। श्री कृष्ण काल नहीं थे, उन्होंने पहले कभी काल नहीं कहा, फिर बाद में कभी अपने आप को काल नहीं कहा, श्री कृष्ण के शरीर में वो खुद बोल रहा था। तो ये कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसकी अंतिम सांस तक भक्ति करता हुआ जो जाता है वो मुझे इस ओम से प्राप्त होने वाली परम गति प्राप्त करता है। इसी प्रकार सूक्ष्म वेद में कहा कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे, यानी सभी सदग्रंथ और सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म वेद से जो साधना जिस ग्रंथ की मिलती है वो ग्रंथ वहां तक ठीक है। तो वेदों में यही है, गीता में यही है, लेकिन वहां उन्होंने ऑप्शन छोड़ दिया है कि ये कंप्लीट साधना नहीं है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा के पाने का ओ मंत्र तो गीता ज्ञान दाता कहता मेरा मंत्र है, और उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने का, परम अक्षर ब्रह्म को पाने का, वो तीन मंत्र का जाप है। ओम तो सीधा ब्रह्म का, तत्व और सत्य दो सांकेतिक है, ये तत्वदर्शी संत बताओगे उनसे पूछो, तो वो तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल दास है इस विश्व में। अब क्या बताते हैं, सट दर्शन सट भेख कहावे बहुविध दो दो धार मचावे तीर्थ व्रत करें तरबीता वेद पुराण पढ़त है गीता। तीर्थों पे जाने का कहीं गीता में लिखा है, व्रत करने का गीता जी में लिखा है? नहीं लिखा है। छठे अध्याय के 16वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में तो ये प्रमाण दिया है, हे अर्जुन ये योग यानी भक्ति साधना न तो अधिक खाने वाले की सफल होती है और न बिल्कुल ना खाने वाले यानी व्रत रखने वाले, जैसे एकादशी का व्रत रखते हैं तो उस दिन कुछ नहीं खाते हैं, जल आचमन करते हैं, तो वो साधना गलत है, वेद गीता के विरुद्ध है, और तुम व्रत करते हो तो इसको कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। तो यहां परमात्मा सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कह रहे हैं कि सट दर्शन सट भेख कहावे और बहुविध धुन धुन धार मचावे, ऊं देखो इनकी साधना बड़ी कठिन और ने उसे चबर डूंडा ठा रखा है न तय, और कहते तीर्थ व्रत करें तरबीता और वेद पुराण पढ़े ये गीता, खाक पढ़े फिर गीता के उन्होंने, चार संप्रदा 52 द्वारे जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, उन्होंने निज नामों को ऊपर कभी सोचा भी नहीं, देखा देखी जो गुरु ने दे दिया आगे वो देने लगे, ये साधना गलत थी। और माला घाले हुए हैं मुक्ता, चार चार माला पैर करने सोचा हो गए पार, सट दल उआ बाई बकदा, उआ बाई बक्या करते इनको कोई ज्ञान नहीं था, श्री कृष्ण को सर्वेश्वर महेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश अद्रो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, इसको उआ बाई कहते हैं, अटबट बकवास करते थे। माला घाल हुए हैं मुक्ता ये सट दल उआ बाई बकदा, बैरागी बैराग न जाने बिन सतगुर नहीं चोट निशाने, ये बैरागी बन गए घर छोड़कर चले गए, कहते हैं बैरागी बैराग ना जाने और बिन सतगुर नहीं चोट निशाने, बिना सतगुर के ये ठीक ठिकाना नहीं मिल सकता, आपको सही ज्ञान वो नहीं प्राप्त हो सकता। बारह बाट बिटम बिलोरी सट दर्शन में भक्ति ठगोरी, इन सभी जितने भी अन्य पंथ बने हुए हैं इनमें सब ठगी की भक्ति है, यथार्थ भक्ति नहीं है, भ्रम भक्ति है। सन्यासी दस नाम कहावे और शिव शिव करे नसन से जावे निर्वाणी नी कच्छ निसारा भूल गए वो ब्रह्म द्वारा। सन्यासी दस नामी सन्यासी कहते शिव जी के भक्ति और शिव शिव करेंगे और संसार उनका समाप्त नहीं है और कहते हैं निर्वाणी नी कच्छ निसारा भूल गए वो ब्रह्म द्वारा। उनको ब्रह्म तक का भी ज्ञान कोयना ब्रह्मा विष्णु महेश तक भूले बैठे हैं। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 में यही कहा है कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो भक्ति करते हैं ये इन्हीं तक इनकी सीमित बुद्धि है, ये मेरी भक्ति भी ना करते गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है। और जिनका ज्ञान इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी से मिलने वाले इस क्षणिक लाभ पर स्थिर हो गया है, दृढ़ हो गए, किसी की सुनते नहीं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बचते अर्जुन, तो यहां वही कह रहे हैं परमात्मा, यही कह रहे हैं सन्यासी दस नाम कहावे शिव शिव करे नसन से जावे निर्वाणी नी कच्छ निसारा ये भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म तक के साथ रामना करते सुन सन्यासी कुल कर्मनासी भग में प्योंदी भूले धोंदी छल छिदर की भक्ति ना कीजे आगे जवाब कहो क्या दीजे। भरम कर्म भैरों को पूजे सत शब्द साहेब ना सूजे, ये कोई भैरों को राग रहा है, किसी को पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है, सत शब्द वो सच्चा नाम परमात्मा का किसी को नहीं सूझा, पता नहीं चला। माला मुक्टी कक्कड़ हुक्टी बाना गौड़ी भांग भसोड़ी ये भी बैदा है, बैदा माने व्यर्थ। जंगम जैनी फोकट फैनी नाम न चीन्या गुण गुरु गुण ही न नगन निराशा तनको त्रासा पशु प्राणी स्वान समानी। कहती जैनी लोग घूम रहे हैं नंगे, कहते पशु पक्षी भी नंगे घूमते, फिर उनसे पहले तो उनकी मुक्ति हो जाएगी, तो जन्म से नंगे रहते हैं नहीं, परमात्मा ने बुद्धि दी है अपना जैसा उचित है वैसा कपड़ा ढक के और अपनी भक्ति करो। इंसान में कुछ शिष्टाचार होता है उसको अपना कर रहो, सभ्यता से रहे। अब क्या बताते हैं वेद पुराणी कथा कहानी पढ़ पढ़ भूले अर्थ न खुले। वेद पुराणों को पढ़ा कथा कहानी सुना दी, उनमें वास्तविकता का अर्थ है क्या, उसका सारांश बनता है, ये उनसे खुले नहीं निर्णय नहीं कर सके, जिस कारण से इन्होंने सत साधना ना करके और ड्रामा शुरू कर दिया। फिर क्या बताते हैं बैरागी सन्यासी सेवड़े ये तन पर छार लगावे हैं पांचों नार पच्चीसों लड़के धुंधू धार मचावे हैं कंठी माला और मृग छाला ये सिर पे जटा रखावे हैं ढोलक ताल झालरी पीटे फिर ताना री री गावे हैं। है, कहते ये भक्ति है बैरागी सन्यासी सेवड़े एक राख लपेट के घूम रहे हैं और फिर अंदर उनका कितना जो का त्यों क्रोध और सभी बीमारी जो की त्यों जमा है, जैसे सन्यास ले लिया घर छोड़ दिया बैरागी हो गए। किस लिए हो गए कि एक पत्नी को त्याग दिया, घर त्याग दिया कि ये मेरी भक्ति में बाधक है और मैं जंगल में बैठकर भक्ति करूंगा। परमात्मा कहते एक नारी त्याग दीनी ये पांच नारी गैल वे पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी वो सैल वे। एक औरत को त्याग कर आप जंगल में बैठ गए उस भक्ति बाधा जानकर, परमात्मा कहते आपके अंदर ये पांच नारी और हैं जो भक्ति बाधक हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इन पांचों को त्यागते घर में रह ले, फिर घरवाली नारी इतनी बाधक नहीं है जितनी ये तेरी बीमारी बाधक है जो आपके अंदर जमा है। एक नारी त्याग दीनी पांच नारी गैल वे पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी वो सैल वे। कहते सुखदेव जैसा वैराग्य तो नहीं हो सकता, मां के गर्भ से निकलकर भाग गया था उठ के, और जब तक सतगुरु नहीं मिले उसने पता नहीं कहां कहां तक भटका था, स्वर्ग में भी चला जाता था, उसका मोक्ष नहीं हुआ। तो सतगुरु के बिना, पूर्ण संत के बिना यह बीमारी कटे नहीं जो जन्म और मरण की। बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर छार लगावे हैं, पांचों नार पच्चीसों लड़के धूंधो दार मचावे हैं, पांचों नार ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के नु जमा तुम्हारे अंदर, कंठी माला और मृग छाला सिर पर जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे ये तो नारी री गावे हैं। ये माता का जागरण करेंगे या बेंजू बेंजू बांध कर फिर गीत गावे शब्द गावेंगे, ये कोई भक्ति है? अपने आत्मा हमने भक्ति का पता ही नहीं था। अब जैसे ये दास शुरू प्रारंभ में जब भक्ति मार्ग पर लगा तो इस यथार्थ भक्ति का प्रकाश नहीं था गरीब दास जी के पंथ में। वाणी शब्द वो बहुत गाया करते थे और जहां भी गाने ये सत्संग का आयोजन होता था तो वहां पांच चार अच्छे चुने हुए गायक लाए जाते थे जिनकी आवाज सुरीली हो। तो फिर पहले एक शुरू होता था, फिर कहते थे ना भाई ये तू सुना, आपकी आवाज कुछ बहुत बढ़िया है, फिर उसको लगाते, अरे भले आदमी हो ये अब अकल काम अब करे जो भगवान ने दया बख्शी।
बहन जी नमस्कार।
सच्चा है।
बहन जी कहाँ से आए आप?
पलवल से।
बहन जी क्या नाम है आपका?
नेहा दासी।
बहन जी संतरामपाल जी महाराज की शरण आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे?
हिंदू धर्म में जन्म लेने के कारण हम ब्रह्मा विष्णु महेश और व्रत उपवास किया करते थे।
तो उन सब ब्रह्मा विष्णु महेश की या व्रत उपवास की आपको क्या लाभ मिला?
उनसे हमें कुछ नहीं लाभ मिला, केवल दुखी दुख मिला। मेरी मम्मी जी जो हमेशा ब्रह्मा विष्णु महेश कितनी भक्ति किया करती थी फिर भी उनको कोई लाभ नहीं हुआ। एक भाई था वो भी खत्म हो गया, फिर बहन थी वो भी खत्म हो गई, और इतनी फाइनेंशियल हमारी कंडीशन खराब हो गई थी।
तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए?
मेरी एक बड़ी सिस्टर है, पहले उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा दिखाई, मैंने उसे सारा पढ़ा समझा और दिन रात परमात्मा की आरती हुआ करती थी। हम ध्यान पूर्वक सभी घर के सदस्य बैठकर एक साथ सुना करते थे। फिर हमने परमात्मा का ये साधना प्रोग्राम 8 बजे आता है जो गुरु जी का, वो देखा, तब हमने कहा कि हाँ यही गुरु है जो जिनसे हमारा कल्याण हो सकता है। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया।
तो संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला?
संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद हमें बहुत लाभ हुआ, इतना लाभ हुआ कि ये वक्त भी कम पड़ सकता है। हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो खराब थी, अब बहुत अच्छी हो गई है। और हमारी जो पड़ोसी और हमारे टीचर्स बोला करते थे कि आपके बच्चे हैं वो हर महीने आश्रम जाया करते हैं, उनकी पढ़ाई कैसे होगी, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। परंतु अब 2013 में जो हमारा परिणाम आया है, मेरी छोटी बहन जिसने 10th में 96.2% लेकर पास हुए, और मैं 12th जो कॉमर्स साइड से मैंने 87.2 नंबर लेकर पास किए हैं, और हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशी है। ये सब परमात्मा की दया से है, हम अपना जो क्रेडिट है वो सब परमात्मा को ही देंगे, क्योंकि हमने परमात्मा की भक्ति से ही ये नंबर प्राप्त किए हैं।
बहन जी साधक समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप?
हम साधक समाज को, सभी समाज लोग भाई बहनों को ये संदेश देना चाहते हैं कि बरवाला आश्रम में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर परमात्मा आए हुए हैं, उनसे नाम लीजिए और अपना कल्याण करवाइए।
जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत
सच्चा है।